इशिका केशव के साथ सिंघानिया मेंशन पहुंच चुकी थी। श्रुति ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन केशव और उसके गार्ड्स के कारण इशिका और केशव ऊपर पहुंच गए। जैसे ही वे राधिका के कमरे के पास पहुंचे, उन्हें राधिका की चीखें सुनाई दी। वो आदर्श को खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी। राधिका के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर इशिका की आंखें गुस्से से छोटी हो गईं। उसने आदर्श की तरफ देखा और सख्ती से कहा, हमें जल्दी करनी होगी। केशव ने उसकी बात पर सिर हिलाया और वे दोनों जल्दी ही राधिका के कमरे के आगे आ गए। इशिका ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो उसने महसूस किया कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन लोगों के पास सोचने समझने या दरवाज़ा खटखटाने का समय नहीं था। केशव कुछ कदम पीछे हटा और फिर दरवाज़े को एक ज़ोरदार लात मारी। एक झटके के साथ दरवाज़ा खुल गया। इशिका और केशव दौड़कर अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कमरे के फर्श पर पानी बिखरा हुआ था। राधिका के हाथ बाथरूम के दरवाज़े से बंधे हुए थे। उसके कपड़े फटे हुए थे। केशव ने एक नज़र राधिका की तरफ देखी और फिर जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं। उन्हें अफसोस हो रहा था कि जिस औरत से उन्होंने प्यार किया था, उन्हें आज इतने सालों बाद ऐसे हाल में देख रहे थे। केशव ने गुस्से से आदर्श की तरफ देखा। आदर्श भी उन्हें देखकर हड़बड़ा गया। आदर्श ने डरते हुए कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर वो जल्दी से आगे बढ़ा और उसने राधिका को एक तौलिया उठा दिया। वो नहीं चाहता था कि केशव उसे इस हाल में देखें। आदर्श राधिका से बहुत प्यार करता था, लेकिन बीते कुछ दिनों से उसके प्यार ने एक अलग ही रूप ले लिया था। वहीं इशिका की आंखों में भी आंसू थे। केशव ने भले ही एक नज़र राधिका की तरफ डाली हो, लेकिन उसके शरीर पर लगी चोटों के निशान उनकी नज़रों में आ गए थे। आदर्श राधिका के पास खड़ा था। तभी केशव ने बिना राधिका पर नज़र डाले आदर्श का गला पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे के बाहर ले गया। वो राधिका को इस हाल में देखना नहीं चाहता था और न ही ये चाहता था कि राधिका के सामने कुछ भी हो जिससे वो और परेशान हो जाए। कमरे के बाहर आते ही केशव ने आदर्श के मुंह पर जोरदार घूंसा मारा। उसके पीटने की आवाज़ अंदर तक आ रही थी। कमरे के अंदर इशिका आंसुओं में डूबी राधिका की तरफ देख रही थी। इस बीच श्रुति जल्दी से दौड़कर कमरे के अंदर पहुंची। उसने राधिका को इस हाल में देखा तो वो हैरानी से बोली, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली जिससे उनकी आंखों में कैद आंसू बाहर आ निकले। राधिका के शरीर पर आई चोट के निशान उसके दर्द की दास्तां बता रहे थे कि आदर्श ने उसके साथ क्या क्या किया होगा। राधिका को रोते देखकर श्रुति की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, सब मेरी ही गलती है। मुझे लगा कि वो तुम्हें प्यार करते हैं। इतने सालों में हमेशा उनका डेडिकेशन देखा है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो आपके साथ ये कर देंगे। तुम्हें इतनी सारी चोटें लग गई हैं। राधिका ये सब नहीं सुनना चाहती थी। उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ बांध ली। उसका शरीर कांप रहा था। इशिका राधिका की तरफ बढ़ते हुए बोली, माँ प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। इशिका राधिका के पास गई और उसके हाथ खोले। फिर वो इधर उधर देखने लगी। इशिका ने राधिका के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया था, इसलिए उसे उनके कमरे के बारे में ज्यादा पता नहीं था। इशिका श्रुति की तरफ देखकर पूछा, आंटी माँ के कपड़े कहाँ हैं? इशिका के मुंह से राधिका के लिए माँ शब्द सुनकर श्रुति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। इशिका ने अपना मास्क हटाया और नरमी से कहा, माँ के कपड़े ले आइए आंटी। इशिका को अपने सामने देखकर श्रुति बुरी तरह चौंक गई। वो धीरे से बोली, इशिका तुम जिंदा हो? इशिका के दो बार कहने पर भी श्रुति ने नहीं सुना। वो इशिका को जिंदा देखकर बुरी तरह हैरान रह गई थी। इशिका को तीसरी बार तेज आवाज में कहना ही पड़ा, आंटी प्लीज माँ के लिए कपड़े लेकर आइए, ये सब बातें बाद में होंगी। श्रुति ने हड़बड़ाकर सिर हिलाया और फिर जल्दी से वो राधिका के लिए कपड़े लेकर आई। इशिका उन्हें चेंज कराने ही वाली थी तभी राधिका कुछ कदम दूर हो गई। उसने श्रुति की तरफ देखकर कहा, श्रुति तुम कर दो प्लीज। इशिका समझ गई थी कि राधिका नहीं चाहती कि इशिका उसे इस हाल में देखे। उसने हमेशा अपनी माँ को एक मजबूत महिला के तौर पर देखा था, ऐसे में वो उसके आगे कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इशिका कुछ कदम पीछे हट गई और उसने कपड़े श्रुति को दे दिए। श्रुति जब बदलवाने के लिए राधिका के पास गई तब उन्हें बाहर से आदर्श के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। राधिका ने इशिका की तरफ देखकर कहा, इशिका बाहर जाओ, मैं नहीं चाहती कि केशव किसी की जान ले, इससे उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन आप? इशिका ने परेशान स्वर में पूछा। मेरी चिंता मत करो, मैं कपड़े बदलकर बाहर आ जाऊंगी, तुम अभी बाहर जाओ, राधिका ने जवाब दिया। इशिका राधिका को इस हाल में छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहती थी। अचानक उसकी नज़र बाथरूम की तरफ गई जो बिखरा हुआ पड़ा था। उसे बाथरूम की हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि वहां क्या हुआ होगा। बाहर जिस तरह से केशव आदर्श को मार रहा था, इशिका भी यही चाहती थी कि आदर्श मर जाए, फिर भी राधिका के कहने पर उसे बाहर जाना ही पड़ा। बाहर आकर इशिका ने देखा कि जमीन पर आदर्श अधमरी हालत में पड़ा था। केशव ने उसे इतना पीटा था कि उसका मुंह सूज गया था। केशव ने अभी भी उसकी कॉलर पकड़ रखी थी। वो उसके मुंह पर एक और पंच मारने वाला था तभी इशिका ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाइए। इशिका ने बाहर आते वक्त अपना मास्क फिर से पहन लिया था। उसके इस तरह रोकने पर केशव ने उसकी तरफ गुस्से में घूर कर देखा। केशव की नज़रों को समझते हुए इशिका ने कहा, चिंता मत कीजिए, इन्होंने जितनी तकलीफ दी है उससे कई गुना ज्यादा दर्द मैं इन्हें देने वाली हूँ, बोलते हुए इशिका गुस्से में तेज सांसें ले रही थी। इशिका के कहने पर केशव ने आदर्श को छोड़ दिया। इशिका ने वहां खड़े दो गार्ड्स को आदर्श को पकड़ने के लिए कह दिया। इशिका ने अपने पास से कुछ पेपर्स निकाले और उन्हें बेसिन के पास जाकर गीला किया। इशिका को इस वक्त किसी की फिक्र नहीं थी। वो उन गीले पेपर्स के साथ बाहर आई और आदर्श के मुंह पर रखकर उसका दम घोटने लगी। लगभग एक मिनट बाद इशिका ने उन पेपर्स को आदर्श के मुंह के आगे से हटाया। उसका शरीर बेजान होने लगा था और वो हांफने लगा। केशव इशिका के पीछे खड़े हुए थे। इशिका आदर्श के थोड़ा पास गई और उसने अपना मास्क हटाया। इशिका को अपने सामने देखकर आदर्श चौंक गया। तुम इशिका, तुम जिंदा हो? आदर्श ने बिल्कुल धीमी और कांपती आवाज में कहा। तो तुम्हें सरप्राइज हो रहा है कि मैं जिंदा हूँ? इशिका ने बेहद शांत स्वर में जवाब दिया। वे दोनों इतनी धीमी आवाज में बात कर रहे थे कि केशव को उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। हाँ, मुझे आश्चर्य हो रहा है। तुम्हें मर जाना चाहिए था। तुम तो बहुत बड़े समुद्र के अंदर थी, फिर तुम कैसे बच सकती हो? आदर्श ने जवाब दिया। आदर्श जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहा था, इशिका सब समझ गई थी। उसने गुस्से से अपनी मुठियां कसते हुए कहा, इसका मतलब वो तुम थे जिसने हमें मारने की कोशिश की। बिल्कुल, आदर्श बोला। फिर उसने एक नज़र केशव की तरफ देखी जिसने उसे बुरी तरह पीटा था। आदर्श थोड़ा ऊपर उठा और इशिका के कान के पास आकर कहा, अब जब केशव सिंघानिया यहाँ है तो एक बात तय है कि आज मैं बच नहीं पाऊंगा। जाते जाते मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहूंगा। इशिका की आंखें हैरानी से छोटी हो गई थी। बहुत सी बातें ऐसी थीं जो सिर्फ ईशानी जानती थी। इशिका को लगा कि आदर्श शायद ही उसे उन बातों के बारे में उसे चखता है।
आदर्श ने गहरी सांस ली और कहा, आज जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो लड़की ईशानी है। तुम्हारी माँ को जुड़वा बच्चे होने वाले थे और मैंने उसे ये कभी पता नहीं लगने दिया। बच्चे पैदा होने के बाद मैंने उसे उन्हें दे दिया था। उसके बाद मेरे कहने पर ईशानी मालविका के भाई के साथ मिलकर तुम्हें बदल दिया गया। ईशानी यहाँ पर वापस आई तो मुझे लगा कि वो तुम्हारी माँ से मिलेगी और उसे सारा सच पता चल जाएगा। अगर ऐसा होता तो वो मुझे छोड़ देती। मजबूरी में मुझे तुम दोनों को मारना पड़ा, लेकिन देखो तुम बच गई और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो लड़की तुम्हारी जुड़वा बहन थी। इशिका गुस्से से आदर्श की तरफ देख रही थी। ईशानी उसकी जुड़वा बहन थी, इस बारे में इशिका को अभी पता चला था। शायद ईशानी इस सच को जानती थी, लेकिन उसने इशिका को इस बारे में नहीं बताया था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी एक 3 साल की बेटी है, तुम्हारी वजह से एक बच्ची अनाथ हो गई, इशिका ने गुस्से में कहा। मर तो तुम्हें भी जाना चाहिए था। तुम जानती भी हो तुम्हारे यहाँ वापस आने पर कितनी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। मेरे वार से भले ही तुम बच गई हो इशिका, लेकिन वे तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारी माँ को मार डालेंगे, आदर्श ने इशिका को घूरते हुए कहा और फिर उसका गला दबाने के लिए अपने हाथ बढ़ाने लगा। इशिका को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उन पेपर्स को फिर से उठाया और आदर्श के मुंह पर रख दिया। उसने मन ही मन कहा, इसकी वजह से हम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। हमने इतने सालों तक इतने दुख झेले और इसे अभी भी अपनी पड़ी है। वो लड़की मर गई, वो मेरी बहन थी। इस इंसान ने प्यार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ को तकलीफ दी है। इशिका गुस्से में पागल हो गई थी। वहीं दम घुटने की वजह से आदर्श सांस लेने के लिए हाथ पैर मार रहा था। किसी ने इशिका का हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींच लिया। इशिका ने जल्दी से अपना मास्क पहना और गुस्से से केशव की तरफ देखी। केशव ने कहा, ये इस तरह इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं मर सकता। केशव ने एक आदमी को इशारा किया जो आदर्श को फर्स्ट एड देकर उसका इलाज करने लगा था। इशिका सर्द निगाहों से केशव की तरफ देख रही थी, लेकिन केशव को उसकी नज़रों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। केशव ने सिर हिलाया और इशिका से कहा, तुम इस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हारा तो इससे कोई रिश्ता भी नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे मुझसे ज्यादा नफरत तुम इस आदमी से करती हो। इशिका ने जवाब में कहा, क्योंकि उसने किसी को जान से मारा है जो मरना डिजर्व नहीं करते थे। हाँ, तो कौन सा मैं इसे जिंदा रखकर इसकी पूजा करने वाला हूँ? इसे इतना तड़पाऊंगा कि ये मौत के लिए भीख मांगेगा, केशव ने जवाब दिया। उसके दिमाग में आदर्श को टॉर्चर करने का ख्याल चल रहा था। केशव की बात सुनकर आदर्श ने कहा, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? मुझे मार डालो, मैं जीना डिजर्व नहीं करता हूँ, प्लीज मुझे मार डालो। आदर्श की बातों से इशिका समझ गई थी कि वो थोड़ी देर पहले उसे इसलिए भड़का रहा था ताकि इशिका उसे मार डाले, वरना उसके मरते वक्त ये राज बताना कोई जरूरी नहीं था कि ईशानी उसकी जुड़वा बहन थी। वो तो वैसे भी इस दुनिया से जा चुकी थी। आदर्श समझ गया था कि अगर वो केशव के हाथों मारा गया तो वो उसे बहुत बुरी मौत देगा। इशिका ने सब समझते हुए आदर्श की बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। आदर्श ने हंसते हुए चिल्ला कर कहा, मैंने तुम्हारी बहन को मार डाला, तुम्हें भी मारना चाहता था, पर तुम बच गई। क्या तुम अपनी बहन की मौत का बदला नहीं लोगी? तुम कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। आदर्श अभी भी इशिका को उकसा रहा था, लेकिन इशिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और कुछ निकालकर फिर उस जल्दी से अपने दांतों के नीचे कुछ दबा लिया। उसके आसपास खड़े गार्ड उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे आदर्श ने जहर खा लिया हो। तुरंत ही उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा और उसने काले रंग की खून की उल्टी कर दी।
अगर आपको लगता है कि सबसे बड़ा खिलाड़ी आदर्श है तो ऐसा नहीं है। कोई और भी है यहाँ जो खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, मास्टरमाइंड है। आगे उसका चेहरा भी सामने आ जाएगा। चलिए पढ़कर रेटिंग दे दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।